பிரியம் சதா பரிபவக்னமபீஷ்டதோஹம் தீர்த்தாஸ்பதம் சிவவிரிஞ்சினுதம் சரண்யம் பிரித்யார்த்திஹம் பிரணதபால பவாப்தி போதம் வந்தே மகாபுருஷதே சரணாரவிந்தம். சத்சங்கி மகிமா. प्रश्न करने वाला पूछता है कि एक दिन आपने ये कहा था कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग तूलन ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग. अपना ये सत्संग ऐसा नहीं गौण है, इतना महत्वपूर्ण सत्संग नहीं है कि एक क्षण में कल्याण हो जाए. तो अपने सत्संग में क्या कमी हो रही है? सत्संग करते हैं, समय लगाते हैं, सब काम धंधा छोड़कर आते हैं, और आप जैसे हमको महात्मा भी मिल गए, अब हमारे सत्संग में कहां कमी है महाराज, बताओ. उत्तर देते हैं, बिनु सत्संगन हरि कथा तेहि बिनु मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद होइ न दृढ़ अनुराग. सत्संग की महिमा की कितनी बातें हैं और अपना सत्संग कमजोर है, क्यों? तुलसीदास जी कहते हैं कि सत्संग के बिना मोह नष्ट नहीं होता, अर्थात सत्संग मिलेगा तो मोह नष्ट होगा. इसको आप अपने दिल में टटोल करके देखिए कि सत्संग करते हैं क्या आपका मोह नष्ट हो गया, और मोह नष्ट हुए बिना भगवान में दृढ़ अनुराग नहीं होता, प्रेम नहीं होता, और पूर्ण प्रेम के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं होती. और दूसरी तरफ अभी आपने जो बोला, एक पलड़े में सत्संग का सुख है, एक पलड़े में स्वर्ग अपवर्ग का सुख है, तो दोनों भी सत्संग के बराबरी नहीं कर सकते. अब हम आपको बतावे कि वास्तव में तो बहुत बड़े महापुरुष होते हैं सत्संग करने वाले, सनकादि ऋषि जैसे कोई महात्मा हुए, उनके संग के लिए कहा है कि एक लव का सत्संग काफी है. सबसे बढ़कर सत्पुरुष कह दो, महापुरुष कह दो, जो कुछ कहना सो कह दो, वो केवल परमात्मा है. भगवान के जो प्रेमी हैं, जिनको भगवान ने भक्ति ज्ञान प्रचार के लिए भेजा है, अथवा जिनको भगवान ने कुछ अधिकार भी दिया है, ऐसे महापुरुषों के दर्शन से, भाषण से, स्पर्श से भी मनुष्य का कल्याण हो सकता है. परंतु वहां कल्याण की भी तीव्र इच्छा चाहिए. आप लोगों को तो संसार के भोग आराम सुख सुविधा भी चाहिए, और बड़े से बड़े सत्संग का लाभ भी चाहिए, ऐसे कैसे पार पड़ेगी? संत परमात्मा से जो बहुत प्रीति कर चुके हैं, उनका संग सत्संग है. एक ऐसे पुरुष होते हैं जो स्वयं तो परमात्मा को प्राप्त हो चुके होते हैं, दूसरों को प्राप्त नहीं करा सकते. एक ऐसे होते हैं जो दूसरों को भी करा सकते हैं. जो दूसरों को करा सकने का अधिकार रखते हो, उन महापुरुषों का नाम सत्संग है. कहते हैं हमको ऐसे दोनों ही नहीं मिले तो भाई जो जिज्ञासु हैं, उनका संग भी गौण रूप से सत्संग है. माने पूर्णता तो प्राप्त हुई नहीं, चल रहे हैं, जिज्ञासु हैं, उनका भी संग है, एक तरह से सत्संग है. गौण माने एक तरह से. जैसे जो बद्री काश्रम जाके आए हैं वो कहे चलो हम बद्री काश्रम गए, हमारे साथ चलो हम बद्री नारायण के दर्शन कराएं, तो उनका संग है वो यात्रा के लिए असली संग है। वो बीच बीच में बताते रहते हैं ये यहां है, अब ये जगह है, ये जगह है। परंतु ऐसे पुरुष नहीं मिले तो जो टिकट खिड़की पर खड़े हैं और बद्री नारायण जाने वाले उनका संग भी ठीक ही है, बेचारे ये भी जाएंगे इनके साथ, अपने भी चले जाएंगे। ऐसे ही जो भजन साधन में अभी लग रहे हैं, लगे हुए, उनका संग भी कल्याण करने वाला हो सकता है। तुलसीदास जी ने जो सत्संग का सुख स्वर्ग और मुक्ति से बढ़कर बताया है, इससे सत्संग की महिमा मुक्ति से भी बढ़कर है। हम लोग गहराई से ध्यान नहीं देते हैं। नारद जी भगवान के बड़े भक्त थे, उनका काम संसार का उद्धार करना था। सृष्टि की उत्पत्ति हुई, दक्ष प्रजापति के 10,000 लड़के पैदा हुए, तपस्या की, नारद जी उपदेश देने पहुंच गए और उन सबको मुक्त कर दिया। दक्ष प्रजापति ने सोचा कि अरे मैं तो संसार चलाने के लिए 10,000 लड़के पैदा किए थे, नारद ने तो सब चौपट कर दिया, कल्याण कर दिया उनका। फिर 1,000 और लड़के पैदा किए, उनको भी कल्याण में लगा दिया। दक्ष प्रजापति ने कह दिया कि जाओ नारद जी, हम शाप देते हैं, आप 2 घड़ी भी एक जगह नहीं ठहर सकते। नारद बाबा खुश हो गए, मान अपमान का कोई उनको असर नहीं। ऐसे जो महापुरुष होते हैं उनके संग की महिमा है। ऐसे ही एक बार विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी परस्पर में मिले। विश्वामित्र जी तपस्वी थे, तपस्या की प्रशंसा करने लगे, देखो अपने लायक काम है, लायक सत्संग है। वशिष्ठ जी ने कहा कि ओ तपस्या है तो ठीक, लेकिन सत्संग से ऊंची कोई चीज नहीं होती। आपस में विवाद हो गया, अब एक तपस्या को ऊंचा बताए, एक सत्संग को ऊंचा बताए, निर्णय कौन करे। तो वशिष्ठ जी निर्णय कराने के लिए शेषनाग के पास और कहा अपन दोनों ही अपनी बात रखे। दोनों ने बात रखी। शेषनाग ने विश्वामित्र जी की बात सुनी, वशिष्ठ जी की भी बात सुनी, कहा बड़ा निर्णय दे। शेषनाग ने कहा कि क्या बताऊं, जो आदमी किसी काम में व्यस्त रहता है वो आदमी क्या निर्णय करेगा। पहले मेरे पर पृथ्वी का भार है, इस भार को आप में से जो थोड़ी देर रख ले वे, फिर मैं शांति पूर्वक सोचूं तब निर्णय दूं। विश्वामित्र जी हंस के बोले इसमें क्या बात है, मेरी सारी तपस्या का बल पृथ्वी को धारण करने में लगाता हूं। क्योंकि विश्वामित्र जी को तपस्या का अभिमान था। पृथ्वी 10,000 बरस के मेरे तप बल के कारण से स्थिर हो जाए। शेषनाग जी ने कहा छोड़ दो, मैं पृथ्वी को छोड़ दीजिए। थोड़ा सा फण सिरकाया, पृथ्वी डगमगाने लगी। तब अच्छा 60,000 वर्ष का तप अर्पित करता हूं, स्थिर हो जाओ। फिर शेषनाग से फिर पृथ्वी डगमगाई। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि हे पृथ्वी, हमने एक क्षण यदि अच्छे महापुरुष का संग किया है तो तुम स्थिर हो जाओ, तो पृथ्वी यूं रही। शेषनाग ने कहा विश्वामित्र जी न्याय तो हो गया, ये कैसे हुआ। अब आपने देख चुके हैं ना, देख लिया ना आपने, 60,000 वर्ष की तपस्या के बल से पृथ्वी स्थिर नहीं हुई, एक क्षण के सत्संग से पृथ्वी स्थिर हो गई। आप खुद ही निर्णय कर लो। ये जो बार बार कभी कभी भूकंप होते हैं वो हम लोगों को चेताते हैं कि सत्संग करो, क्योंकि बिना सत्संग के ये हलचल मिटेगी नहीं। गौरांग महाप्रभु कीर्तन करते हुए निकलते थे तो पशु पक्षी सब मुग्ध हो जाते थे, बड़ा भारी प्रभाव पड़ता था। मुसलमान लोग भी जो नास्तिक होते वे भी हरि बोल का कीर्तन करते थे। मुसलमानों का राज था, राज की तरफ से मुसलमानों को रोका गया, डंडे बरसाए, कोड़े बरसाए, तो रोने की जगह हरि बोल बोलते थे, हरि बोल। ऐसे जो महापुरुष होते हैं उनका संग मिल जाए तो जिसकी महिमा गावे उतनी थोड़ी है। ये जो तात स्वर्ग अपवर्ग सुख वाली बात है, ये हनुमान जी के संग की बात है। हनुमान जी ने मुक्का मारा लंकनी को, भगवान की याद आ गई। मुक्ति के दाता से, मुक्ति के भोक्ता से दाता बढ़कर होता है। जो मुक्ति का दाता होता है वो मुक्ति के भोगने वाले से ऊंचा होता है। भगवान शंकर ने काशी में एक सदावर्त लगा रखा है, हम मुक्ति के भोक्ता बने उसकी अपेक्षा मुक्ति के दाता बने तो बड़े महत्व की बात है, क्योंकि सदावर्त में तो मंगते लोग जाते हैं। क्यों काशी में जाकर मरने का ही एक आग्रह रखे हैं? वो तो मंगतों की मुक्ति है, अपने तो मुक्ति देने वाले बने। एक सेठ के यहां सदावर्त चलता था, कोई आओ कोई भोजन करो, दुखी आदमी आते भोजन करते। सेठ का एक सेवक था, वो सबको भोजन कराता था, उसको बड़ी प्रसन्नता होती थी। दूसरों को खिलाते पिलाते तीसरा पैर बीत जाता, 11-12 बज जाते। सेठ आकर कहता कि भाई तुम भी तो भोजन करो, तुम भोजन कर लो, उतनी देर मैं तुम्हारा काम कर लूंगा। सेवक कहता है कि नहीं सेठ जी, मुझे भोजन करने में जो आनंद मिलता है उससे कितना गुना ज्यादा आनंद भोजन कराने में मिलता है, इसलिए आप कृपा करो। जब तक ये भूखे लोग खड़े हैं तब तक आप भोजन की बात कहो ही मत। वो देख रहा है भूखे लोग आ रहे हैं, भोजन करते हैं, संतुष्ट होकर चले जाते हैं। सेठ ने कहा अरे कैसा ये सेवक है, भोजन करता है पैसा लेता नहीं है, ये तो मुझसे भी बढ़कर दाता है। मैं तो केवल पैसा ही खर्च करता हूं, ये समय को खर्च करता है, भाव को खर्च करता है, मैं इसके बराबर खर्च नहीं कर सका। इसी प्रकार से सेठ है भगवान और बांटने वाला है भगवान का सच्चा प्रेमी भक्त, और जो भोजन करने वाले हैं वो है जिज्ञासु और सदावर्त है मुक्ति का। ऐसे पुरुष भगवान शंकर ही हो सकते हैं। ऐसे के संग से, ऐसा संग मिल जाए तो ये सत्संग हो जाता है। सत्संग की महिमा जितनी गाई जाए कोई कह ही नहीं सकता, बहुत थोड़ी है। चार प्रकार के भगवान ने भक्त बताए, ऐसे हम भी चार प्रकार के सरकार के व्यक्ति बताते हैं, ध्यान देना। एक तो वे हैं जो काम छोड़ दिया, पेंशन मिल गई, घर में आराम से रहते हैं, एक तो वो आदमी होते हैं। काम अब छोड़ गया, रिटायरमेंट हो गया, पेंशन मिलती है, अपना आराम से रहते हैं, एक तो वो। एक वो है जो पेंशन तो लेंगे नहीं पर सरकार का काम होगा तो बराबर काम करेंगे। तीसरे नंबर के वे जो पेंशन लेता है और जब जब सरकार का काम पड़ता है तब तो काम भी कर जाता है। चौथा वो है जो पेंशन भी नहीं लेंगे और काम भी नहीं करेंगे। इन चारों में से सबसे बढ़िया कौन सा है? वास्तव में सबसे बढ़िया तो वो है जो पेंशन नहीं लेता और सरकार का काम करता है। ऐसे ही भगवान का कारक पुरुष होता है वो पेंशन नहीं लेने वाले और काम करने वाले के समान होता है। भगवान उनको संसार के उद्धार के लिए भेजते हैं। भगवान समझते हैं मेरे से भी बढ़कर है, खाने पीने की परवाह नहीं है और दूसरों का उद्धार करने में आनंद आता है। मुक्ति रूप जो मालिक का द्रव्य है उसको बांटने में आनंद का अनुभव होता है। एक जो पेंशन मिल गई अब घर में आनंद से रहता है, ऐसा तो जीवन मुक्त है, वो अपने आप की मुक्ति हो गई, अब दूसरों से कोई मतलब नहीं। एक ऐसा है मुक्ति भी नहीं चाहता और पेंशन भी नहीं चाहता, सरकार का काम भी नहीं करता, एकांत में भगवान का भजन ध्यान करता है, वह कोई मामूली थोड़े ही है, वो भी अनन्य भक्त है, मुक्ति नहीं चाहता है। वो कहता है मुझे तो भगवान के भजन ध्यान में आनंद आता है, वो मुक्ति में भी नहीं आता। मुक्ति निरादरी भगत लुभाने। जो कारक पुरुष है मुक्ति नहीं चाहते हैं, उनकी मुक्ति तो धरोहर के रूप में भगवान के यहाँ तिजोरी है। उनका ध्येय सारे संसार का उद्धार कल्याण हो जाए तब भोजन करेंगे। वे कारक पुरुष है नारद जी जैसे, अम्बरीश नारद जैसे भगवान के प्रेमी भक्तों की बड़ी भारी महिमा है। गोपियां जैसे भगवान के साथ आती हैं, भगवान के साथ चली जाती हैं, ऐसे पुरुषों का संसार में आने का ध्येय यही होता है कि संसार का उद्धार करना। कारक पुरुष तो संसार के कल्याण के लिए कमर कस रखे हैं, उनका संग एक नंबर का है। यह तो अभी हमने भूमिका बनाई है, क्योंकि मैं भी ऐसा पात्र नहीं हूं जैसे बड़े बड़े महापुरुष हुए, तो मुझे भी पात्र बनने की चेष्टा करनी चाहिए। आप लोगों को भी अपने कल्याण की विशेष उत्कट अभिलाषा रखनी चाहिए। दोनों में ही कमी है। यदि आप पात्र बन जाएंगे तो भगवान के यहाँ कोई कमी नहीं है, वो तो कारक पुरुषों को भेजते ही रहते हैं। यदि आप चेष्टा करें तो रोकने का भी मेरा अधिकार नहीं, न ये कहने का अधिकार है कि आप पात्र नहीं, न पात्र मानने का अधिकार है। आपकी जिज्ञासा आपको अपने आप ही कल्याण की तरफ ले जाएगी, भगवान की व्यवस्था है। मनुष्य को अपने विषय में ही बात कहनी चाहिए, दूसरों के बारे में आलोचना करने का क्या अधिकार है। वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा है, ये वो उसका स्वभाव नहीं, ऐसी बात करने का क्या अधिकार है, बड़ी भारी बाधा है। अपना तो एक भगवान की चर्चा वाला सत्संग है, साधारण सत्संग है। हम तो कहते हैं, ध्यान से सुनना, हम तो कहते हैं कि अपना सत्संग इतना अच्छा है कि इसमें कुशल नहीं है बस, लेकिन वैसा सत्संग नहीं है जिसका वर्णन आप अभी आपने सुना है। यदि कोई कहे हम इसे सच्चाई सत्संग मान लें तो भाई आप मेरे भार चढ़ाओगे, क्योंकि मैं उन संतों के लायक तो हूं नहीं। आप मुझे उन संतों के बराबर समझोगे तो भार मेरे पर चढ़ेगा। पत्थर की मूर्ति को ईश्वर समझकर काम चलाते हैं, मान्यता को कोई रोक तो नहीं सकता है ना। कुशा को ऋषि मान करके पूजा करते हैं, सुपारी को गणेश मान करके पूजा करते हैं, असली तो मिलते नहीं, क्या करें, पर उन पर भार चढ़ता नहीं क्योंकि उनको पता ही नहीं है। न तो कुशा को पता है, न सुपारी को पता है कि हमको गणेश जी मान रहे हैं, न पत्थर को पता है कि ये मेरे को भगवान मानते हैं। भार तो चेतन पर पड़ता है। अब जो आप मेरे पर भार डालते हो ये मेरे पर ऋण है। तो मैं इतना दरिद्री हूं कि आपके ऋण को चुका ही नहीं सकता। हाँ एक बात है, कोई मुनीम हो और किसी सेठ के यहाँ काम करता हो और वो मुनीम कह देवे सेठ से कि भाई सेठ जी मेरे यहाँ बाजार में ऋण बहुत है, बहुत ऋण चढ़ गया, यदि वो ऋण उतर जाए तो मैं जीवन भर आपके यहाँ नौकरी करूंगा, आपसे लूंगा कुछ नहीं, केवल रोटी लूंगा, रोटी तो खानी पड़ेगी, और आपसे कोई वेतन नहीं लूंगा। सेठ अपने दुकान पर बैठ करके रुपयों की गड्डी खोल देता, आओ भाई इस मुनीम का कोई भी कर्जदार हो, किसी का भी कर्ज इसके रह गया आ जाओ, वो चुका देता है। और मुनीम को भी कहता है कि नहीं तुम्हारा खर्चा देंगे, तुमको अपने हाथ खर्च के लिए कुछ पैसा भी देंगे। ऐसे भगवान यदि कोई ऋण चुकाए तो फिर उसको कौन रोक सकता है? हमारे में तो न योग्यता है, न अधिकार है, न वर्ण है, न ऐसी जाति है, और प्रभु ने तो ये अधिकार दिया ही नहीं, इसलिए आप लोग कोई जोखिम मत उठाना। एक बात और है, भगवान के घर का तो अधिकार है नहीं, बिना अधिकार भगवान की चर्चा करने पर यदि दंड मिले तो मेरे को स्वीकार, क्योंकि माँ बच्चे को मारती है तो बच्चे को लाभ ही लाभ है। गुरु महाराज ने रामानुजाचार्य को मंत्र उपदेश दिया और बड़ी गुप्त बात है, ऐसे पढ़ाए छेड़ते नहीं हम। गुरु महाराज ने रामानुजाचार्य को मंत्र का उपदेश दिया और कहा ये गुप्त है, हमारी आज्ञा के बिना किसी को मत सुनाना, यदि सुनोगे तो नरकों में जाओगे। रामानुजाचार्य ने गुरु की आज्ञा के बिना खूब प्रचार कर दिया। अरे रामानुजाचार्य क्या किया तूने, हमने तुमको गुप्त मंत्र दिया, तुमने सबको सुना दिया, तू घोर नरक में जाएगा। तो रामानुजाचार्य जी ने कहा कि महाराज जिनको मैंने मंत्र सुनाया है उनका क्या होगा? अरे उनका तो कल्याण हो जाएगा पर तुम्हें तो नरक मिलेगा ही। रामानुजाचार्य प्रेम से रोने लगे, गुरुदेव के चरणों में सिर रख दिया, महाराज यदि उनका कल्याण होता है तो मैं 100 बार नरक में जाऊं, मुझे नरक में जाने से खुशी हो जाएगी। गुरु जी प्रसन्न हो गए। मैं तो भाई इस प्रकार की जोखिम में उनका हित मानता हूं रामानुजाचार्य का। भगवान दंड दे और कहे कि तुमको कोई अधिकार नहीं था, तुमने क्यों हमारी चर्चा की, तो हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि महाराज हमने किसी को चेला तो बनाया नहीं, कोई उपदेश आदेश दिया नहीं, कोई दक्षिणा हमने ली नहीं, कोई व्यास गद्दी पर बैठ के उपदेश दिया नहीं, हम तो बालक की तरह तुतलाती बोली में बोलते हैं, किसी को आग्रह भी नहीं किया कि तुम हमारी बात मानो। भगवान कहेंगे कि नहीं नहीं इस सफाई से काम नहीं चलेगा, तो महाराज फिर जो भी दंड देगो हम प्रेम से दंड लेंगे। इसलिए हम लोग उस सत्संग की तुलना में अपने इस सत्संग को रख नहीं सकते हैं। भगवान के जन्म कर्म की दिव्यता बड़ी विचित्र है, उसको तत्व से जानना चाहिए। तत्व से जानने का फल ये होता है कि वो पुनर्जन्म नहीं होता। जो जानने वाला पुरुष होता है वो दूसरों को जना सकता है। बात यह है कि मैं उनके जन्म कर्म की दिव्यता जना दूं जिससे आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, यह तो मेरे में सामर्थ्य नहीं है। आप लोगों की मेरे पर दया है जिसके कारण मेरे द्वारा भगवान की चर्चा होती है। अपना उद्गार कह देता हूं, वह कितनी दूर तक ठीक है ये तो भगवान जाने, मैं तो बुद्धि के अनुसार जैसा होता है वैसा ही बोलता हूं। भगवान तो भगवान है, वे पहले नर नारायण हुए, फिर अर्जुन नर हुआ, भगवान कृष्ण नारायण होंगे। नर नारायण के रूप में लाखों वर्षों तक बद्रिकाश्रम में तपस्या की, इसलिए वहां पर आज भी ऐसा प्रभाव है, वहां की हवा यहां आती है। हरिद्वार से बद्रिकाश्रम तक की जो भूमि है वो तपोभूमि मानी जाती है, यह भगवान की तपस्या की विशेष जगह है। बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणी न तम वेद था परंतप है, मेरे कितने जन्म हुए उनको मैं जानता हूं तू नहीं जानता है। अर्जुन मैं नारायण हूं तू नर है ये तू थोड़े ही जानता है। अर्जुन हिमालय से गया तो भगवान के पास पहुंच गया, क्योंकि वह उनका परिकर था। स्वर्गारोहण के पर्व में भगवान ने कहा है, स्वर्गारोहण पर्व में ये कथा आई है। इधर भगवान कहते हैं कि मैं जब अवतार लेता हूं तो अपने पर माया का पर्दा डालता हूं, दूसरे को ज्ञान नहीं होता। बार बार मेरी कथा सुनते हैं, मेरे रहस्य को समझते हैं, वे ही इस रहस्य को जान सकते हैं। जैसे कोई जाली के अंदर बैठा हुआ होता है उसको बाहर वाले नहीं देख सकते, ऐसे मैं योग माया के अंदर रहता हूं, ये अज्ञानी संसार मुझे नहीं देख सकता। मैं तो लोगों के पिछले जन्म को भी जानता हूं, जिस साल से चल रहे हैं उस साल में आगे कौन सा जन्म होगा वो भी जानता हूं, और वर्तमान को तो सभी जानते हैं। अर्जुन ने पूछा कि महाराज आपका जन्म तो अब हुआ है, मैं कैसे जानूं कि आप बहुत पुराने हैं कि अजोपि सन नब्बे आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन, मैं अजन्मा हूं फिर भी मैं जन्म लेता हूं, प्रकृति को अपने अधीन करके लीला से प्रकट होता हूं। और भगवान के वचन है कि अपि और सन अर्थात अविनाशी अजन्मा होते हुए भी मैं जन्मता हुआ सा दिखता हूं, वास्तव में जन्मता नहीं हूं, केवल मेरी लीला मात्र है। अविनाशी होता हुआ भी विनाशी सा होता हुआ दिखता हूं। जैसे बाइस्कोप में किसी को मरा हुआ दिखाते हैं, मरा थोड़ी गया है वो, बाइस्कोप में दिखता है, सिनेमा में दिखता है। मैं साक्षात ईश्वर परमात्मा प्रकृति को वश में करके प्रकट होता हूं। भगवान का कहना है हूं तो अजन्मा, जन्म सा प्रतीत होता हूं, हूं अविनाशी पर विनाशी सा दिखता हूं, हूं तो ईश्वर दिखता मनुष्य हूं। अपनी माया और अपनी प्रकृति इनको वश में करता हूं और माया से सब प्रादुर्भाव होता है, ये भगवान के जन्म के रहस्य है। भगवान का जन्म हुआ तो चार भुजा से प्रकट हुए, साक्षात दिव्य रूप से प्रकट हुए, वह दिव्य धातु से हुई। देवताओं की तेजोमय धातु है, भगवान का शरीर परम दिव्य और चिन्मय है। दिव्य तो चंद्रमा भी है परंतु वो चिन्मय नहीं है, चिन्मय माने ज्ञान, चंद्रमा में ज्ञान नहीं है। भगवान का स्वरूप चिन्मय है, देवकी के सामने चतुर्भुज रूप से प्रकट होना और फिर अंतर्धान होना, ये जन्मना मरना थोड़ा ही है, ये तो भगवान की लीला है। अथवा बहुनेते न किम ज्ञाते न जब तवा अर्जुन विष्टभ्याह मिदम कृष्णम एकांशे न स्थितो जगत। अर्जुन ने भगवान से कहा कृपा करके आप अपना रूप दिखाइए, भगवान ने दिखाया सारा ब्रह्मांड एक अंश में। अर्जुन भयभीत हो गया, कहा महाराज दूसरी और कृपा कीजिए, चतुर्भुज रूप दिखा दिया, विश्व रूप समेट लिया। भगवान ने कहा तुमको भय नहीं करना चाहिए, मैं बाघ शेर चीता हाथी थोड़ा ही हूं, मैं तो तुम्हारा सखा हूं, चतुर्भुज रूप दिखाता हूं। उसके बाद फिर भगवान अपने कृष्ण रूप में प्रकट हो गए। तो विश्व रूप का प्रादुर्भाव होना, तिरोभाव होने को क्या ये मानेंगे कि विश्व रूप तो मर गया? यदि मरता तो वहां पर मिट्टी होनी चाहिए, राख होनी चाहिए, कुछ तो होना चाहिए, कुछ नहीं था। भागवत में आता है भगवान इसी शरीर से चले गए, तो भगवान यदि मरते तो वहां कुछ तो अवशेष रहता। भगवान राम अपने साकेत धाम में पधारे तो इसी शरीर से पधारे। परम धाम पधारने वाला, परम धाम में रहने वाला शरीर है, वो शरीर ऐसा नहीं होता जैसा हम मानते हैं। तो ये सब भगवान की स्वतंत्रता है, परंतु इतने पर भी भगवान के जन्म के कोई कारण नहीं बनते, वो तो दया के वशीभूत होकर प्रकट होते हैं। हम लोगों ने तो पिछले जन्म में कई भले बुरे कर्म किए थे, उसके वशीभूत होकर जन्म लिया है। हमारे अंदर इच्छा, द्वेष, सुख दुख, चेतना आदि अनेक विकार थे, भगवान में ये नहीं होते, न दुर्गुण दुराचार होते। आप गहराई से देखो, भगवान का जो दिव्य श्री विग्रह वो कितना चमकीला होता है। कहने में वो श्याम वर्ण है, पर श्याम वर्ण होते हुए भी चमचमाता है, चिन्मय है। वहां शरीर और शरीरी का भेद नहीं है, अभी तो एक है। हमारे यहां तो शरीर शरीरी का भेद है, क्योंकि हम खुद ही जानते हैं कि पहले जैसा शरीर नहीं है। पहले बचपन में शरीर था, वैसा शरीर नहीं है। तो शरीर और शरीरी का भेद हम जानते हैं, भगवान के शरीर और शरीरी का भेद नहीं है। भगवान के शरीर की धातु कुछ और ही ढंग की है, वो भगवान में से ही निकलती है और भगवान के रूप में ही रहती है और भगवान में ही सिमट जाती है। वो क्या है वो भगवान भी उसको बता नहीं सकते। भगवान की प्रत्येक क्रिया अलौकिक है, उनके प्रकट होने का निमित्त भी अलौकिक है। साक्षात परमात्मा होते हुए मनुष्य दिखते हैं, ये भी अलौकिक है। भगवान की दिव्यता का तत्व यदि जान लिया जाए तो आदमी भगवान के प्रेम में पागल हो जाए। ऐसे भगवान दिव्य और अलौकिक है। नारायण नारायण नारायण।